नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ओयो के संस्थापक और समूह सीईओ रितेश अग्रवाल ने कहा कि भारत के छोटे शहर अब युवा आबादी की आकांक्षाओं से प्रेरित उद्यमिता के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने का मौका देने से देश में कई यूनिकॉर्न तैयार होंगे। उन्होंने ग्लोबल यूनिकॉर्न समिट में तकनीक के उपयोग से भारत की विशाल ग्रामीण आबादी को जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन CII और DPIIT ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सुविधा का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर कम लागत में तेजी से वितरण की गुंजाइश और पूंजी तक पहुंच के साथ देश के छोटे व्यवसायों के पास बड़ी कंपनियां बनाने के अवसर हैं। अग्रवाल ने कहा कि नया युवा भारत अपने कार्य क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनने की इच्छा रखता है और उन्होंने कहा कि इस बड़े अवसर में छोटे शहरों की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये शहर अब सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि यहाँ बड़े पैमाने पर नए उद्यमी बन रहे हैं और सिर्फ टीयर 2 और टीयर 3 बाजारों में खुश नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि यह एक बेहद संरचनात्मक बदलाव है जो भारत के छोटे शहरों में हो रहा है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नागपुर में 58 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी ने इस जमीन सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजार को बताया कि इस जमीन को मुख्य रूप से प्लॉट की गई आवासीय इकाइयों के रूप में विकास किया जाएगा। यह परियोजना 15 लाख वर्ग फुट के अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्र की पेशकश करेगी। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी कोषों की बिकवाली जारी रहने के चलते रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट के साथ 76.67 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.60 पर खुला और फिर गिरावट दर्ज करते हुए 76.67 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की कमजोरी दर्शाता है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी फेरबदल के बिना 76.57 पर बंद हुआ था। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.37% बढ़कर 103.34 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.57% गिरकर $103.67 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 4,064.54 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 477.05 अंक बढ़कर 57,296.44 अंक पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 151.1 अंक उछलकर 17,189.50 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में यूनिलीवर लिमिटेड, सनफार्मा, एशियन पेंट्स, इंफोसिस, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेडीज और M&M बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर HCL टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS और बजाज फाइनेंस लाल निशान में थे। अन्य एशियाई बाजारों में टोक्यो, हांगकांग, शंघाई और सोल मध्य सत्र के सौदों में हरे रंग में कारोबार कर रहे थे। बुधवार को सेंसेक्स 537.22 अंक या 0.94% की गिरावट के साथ 56,819.39 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 162.40 अंक या 0.94% टूटकर 17,038.40 अंक पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.73% गिरकर $103.50 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध आधार पर 4,064.54 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जेम्स मड्रॉक की लूपा सिस्टम्स ने निवेश उद्यम बौद्धि ट्री सिस्टम्स और उदय शंकर ने प्रसारण सेवा से जुड़ी कंपनी वॉयकॉम 18 में 13,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। उदय शंकर स्टार एंड डिज्नी इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। यह निवेश उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ त्रिपक्षीय भागीदारी के तहत किया जा रहा है। इससे देश में सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक अस्तित्व में आएगी। भागीदारी के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड RPPMSL 1645 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ लोकप्रिय जियो सिनेमा OTT ऐप को वाईकॉम 18 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। RPPMSL की टेलीविजन OTT वितरण सामग्री सृजन और कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति है। पैरामाउंट ग्लोबल वाईकॉम 18 की शेयरधारक बनी रहेगी। वह वाईकॉम 18 को अपनी प्रमुख वैश्विक सामग्रियों की आपूर्ति जारी रखेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्यों को 8 महीने का GST क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 8 महीने का GST क्षतिपूर्ति बकाया जारी कर दिया है और उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपए लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा कि आमतौर पर किसी भी वित्त वर्ष के लिए 10 महीने अप्रैल से जनवरी के लिए GST क्षतिपूर्ति जारी की जाती है, जबकि फरवरी मार्च के लिए क्षतिपूर्ति अगले वित्त वर्ष में दी जाती है। मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के 10 में से 8 महीनों के लिए राज्यों का GST क्षतिपूर्ति जारी कर दी गई है। लंबित राशि भी तब जारी की जाएगी जब उपकर कोष में प्राप्त राशि होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।